श्री ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहन आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। अब तो जब हम राजा की बात करते हैं तो इससे यही समझा जाता है कि राजा के साथ उनके विश्वास पात्र पार्षद, यथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार रहते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो उनके साथ उनकी विभिन्न शक्तियां, पार्षद, विश्वास पात्र, सेवक आदि भी। अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदायों, ऐश्वर्यों, यज्ञों का स्वामी है और अपनी सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है, न केवल परम पुरुष है वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर रहता है। श्री ब्रह्मा ने वैकुंठ लोक में उन श्री भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदायों के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहन आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा सेवित हैं। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर में ये श्लोक कह रहे हैं, जिसमें वो जानना चाहते थे कि जीव किस प्रकार से भौतिक जगत में आते हैं। तो इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी ने प्रारंभ किया कि किस प्रकार ब्रह्मा तपस्या करते हैं, तपह शब्दों को सुनकर के सृष्टि के प्रारंभ में, और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनके हृदय में अपने वैकुंठ के अंदर जो क्रियाएं कर रहे हैं, लीलाएं, उनका दर्शन उनकी कृपा से ब्रह्मा जी को होता है, जिसका विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है। तो ब्रह्मा जी साक्षात्कार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वैकुंठ लोक में क्या होता है। इसलिए हमें स्पेकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है कि वैकुंठ या भगवत धाम क्या है। साक्षात यहाँ ब्रह्मा जी का अनुभव है कि ये वैकुंठ लोक में ये होता है। तो क्या देखे ब्रह्मा जी? तो उन्होंने देखा कि भगवान सभी भक्त समुदायों के स्वामी हैं। और इसलिए, और वहां देखे कि नंद, सुनंद, प्रबल, अरहन आदि अपने अग्रणी पार्षद द्वारा सेवित हैं। तो निराकारवादियों की मना कल्पना के विपरीत वैकुंठ में ब्रह्मा जी ने देखा कि वहां तो क्रियाएं हो रही हैं, निष्क्रियता नहीं है, एक्टिव सेवा है। वहां भगवान के भक्त गण उनको नित्य है, उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी देखे कि लक्ष्मी जी के पति के रूप में ब्रह्मा जी ने देखा, तो भगवान के साथ अलग अलग भक्तों के अलग अलग संबंध में भगवान को उन्होंने देखा। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पति के रूप में, और सुनंद, प्रबल, नंद उनके सेवक के रूप में। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे भक्त हैं और सबके साथ भगवान का अलग अलग संबंध। जैसे एक परिवार में हम देखें, एक व्यक्ति होता है, अलग जो भी परिवार के सदस्य होते हैं उनके साथ उनका अलग अलग संबंध होता है। किसी के साथ पुत्र का संबंध, पिता का संबंध, पत्नी, पति इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार से वैकुंठ लोक में भी भगवान ये सब भक्तों के साथ अलग अलग संबंध है, अर्थात एक पूरा परिवार। इस भौतिक जगत में हम परिवार की परिकल्पना है इसलिए, क्योंकि वैकुंठ जगत में दिव्य परिवार है, इसलिए इस भौतिक जगत में भी परिवार की परिकल्पना होती है, परिवार होते हैं। फिर ब्रह्मा जी का दूसरा अनुभूति, की दूसरी अनुभूति है कि भगवान समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। अर्थात जो कुछ भी कार्य किया जाए उसकी उसके अंतिम भोक्ता भगवान है। अर्थात क्योंकि भगवान परमेश्वर हैं, अतः सभी चीजें केवल उन्हीं के भोग के लिए हैं, वो परम भोक्ता हैं। इसलिए यज्ञपति हैं। भगवद्गीता में भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम बताते हैं कि जो भी कोई कार्य किया जाए उसका केवल एकमात्र बेनिफिशियरी भोक्ता श्री कृष्ण और कोई नहीं। तो बाकी सभी जीव केवल भगवान की प्रसन्नता में के लिए वस्तुओं को अपने को भगवान के सम्मुख भगवान के चरणों में रखने के लिए, ये सत्य है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, बाकी सब उनके सेवक हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने देखा वैकुंठ लोक में ये हो रहा है, सब केवल भगवान की सेवा में लगे और ब्रह्मांड के स्वामी, और किस प्रकार से सभी ब्रह्मांड भगवान के निर्देशन पे चल रहे हैं ये उन्होंने अनुभव किया। अनेक बार हम देखते हैं कई ऐसे संप्रदाय हैं जहां पर भगवान कृष्ण की अकेले पूजा की जाती है, केवल कृष्ण की पूजा होती है, लेकिन हम लोग कभी भी कृष्ण को अकेले पूजा नहीं करते। हम राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम ऐसे हम पूजा करते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो लोग अकेले कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनका मानना है, अधिकतर उनमें से जो है लगभग सभी एक्चुअली वो सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है, तो उनका मानना है कि ये कृष्ण जो है वो भगवान है, पर कैसे भगवान है? अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम वाले भगवान, कि वो अव्यक्त से व्यक्त हुए। इसलिए अल्टीमेटली तो ये जो कृष्ण है हमें इसकी पूजा इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारे लिए मार्ग है वो निराकार में लीन होने का, वो भी तो वही निराकार से अब ये व्यक्त रूप लेके आए हैं कृष्ण। इसीलिए अगर हम कहें कि कृष्ण के साथ में राधा रानी है तो वो क्या मानते हैं? ये तो एक कल्पना का विषय है कि राधा रानी, भागवतम में कहीं कहते हैं कि भागवतम में राधा रानी का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए तो केवल कल्पना के विषय हैं। हाँ ठीक है, राधा रानी भी हैं तो वो भी केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, बस उनकी कोई वास्तविक पर्सनैलिटी नहीं है। उपमा, हर एक चीज को उपमा की दृष्टि से देखते हैं, ये भी एक प्रकार का एक जैसे 9 लाख गाय हैं, तो 9 लाख गाय नहीं है, इतना तो हो ही नहीं सकता। तो एक गाय जिसका नाम नौलखी था ऐसा था, लेकिन तो ऐसे हर को इस तरह समझते हैं। तो राधा तो उसका भी मतलब निकालते हैं कुछ, राधा तो ऐसा नहीं कोई राधा कोई थी, तो राधा का मतलब ये है। तो उनको ये जरूर पड़ता है ये सब करने का, क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान हमेशा अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, तो क्यों ऐसा नहीं समझते हैं? तो यदि हम परम सत्ता को केवल निराकार मानेंगे तो स्वाभाविक है कि जो भी उनके भक्त हैं उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रह जाए, क्योंकि उनकी धारणा के अनुसार सबको तो निराकार में लीन होना है। अर्थात राधा रानी या अन्य भक्त, इस समय जो सेवा हो रही है, जो भगवान जो 5000 वर्ष पूर्व जब अवतरित हुए और वो सब जो दिखाए, तो वो नित्य लीला नहीं है, नित्य नहीं है। वो केवल जब इस भौतिक जगत में देह धारण करके आते हैं तो वो लीला होती है जिससे सब लोग ब्रह्मलीन हो जाएं, अंततः सब लोग समझ लें कि हम ब्रह्म हैं और वापस ब्रह्म में चले जाएं। अर्थात अंतिम स्थिति में फिर वहां कोई सेवा नहीं है, अनित्य है सेवा, नित्य नहीं है। लेकिन इसके विपरीत ब्रह्मा जी का अनुभव क्या कह रहा है कि परम सत्य निराकार नहीं है। परम सत्य एक व्यक्ति है, और जैसे ही हम व्यक्ति की बात करते हैं तो तुरंत वहां पर संबंध आ जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको दार्शनिक दृष्टि से भी देखें तो अगर सब कुछ केवल एक निराकार ब्रह्म है अंत में, तो फिर ये सब विविधता किस लिए, क्यों, इसका कोई रीजनेबल उत्तर नहीं है। निराकार ब्रह्म है, ये भौतिक जगत की सृष्टि कैसे हुई, जीव कैसे, तो वो निराकार ब्रह्म का कुछ अंश अज्ञानता से ढक लिया जाता है, जिसकी वजह से वो एक शरीर में बन जाता है, प्रकार से भौतिक जगत की सृष्टि होती है। लेकिन कैसे ब्रह्म अज्ञानता से, उसका कुछ भाग अज्ञानता से ढका जाएगा, इसका क्या उत्तर है। जो ब्रह्म जो परम है, जो सभी अज्ञानताओं से परे है, जो गुणों से परे है, निर्गुण है, वो कैसे है, उसका कोई भाग अज्ञानता से प्रभावित हो, ढका जाए, क्यों ढका जाए, किस लिए, क्या कारण है? अगर वो परम है तो कैसे अज्ञानता उसको ढक सकता है। तो कोई एक्चुअली प्रॉपर आंसर वो लोग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि उनकी धारणा अपूर्ण है, इसलिए ये सब चीजों को वो समझा नहीं सकते हैं। लेकिन वैष्णव दर्शन के माध्यम से यदि हम देखें तो सब चीज इट मेक सेंस, हर चीज अर्थपूर्ण होती है, कि परम सत्ता, परम नियंता, ये सब एक व्यक्ति को इंगित करने वाले सूचक हैं। परम नियंता, नियंता मतलब एक पर्सनैलिटी है जो नियंत्रण कर रही है। जब नियंता है तो अर्थात नियंत्रण करने वाले भी होने चाहिए, तभी तो नियंत्रण होगा, तभी तो नियंत्रण करने की जरूरत पड़ेगी। रूपा जी लिखते हैं, जब हम राजा की बात करते हैं तो प्रजा होनी चाहिए, नहीं तो बिना प्रजा के राजा का अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं है। वो राजा है लेकिन प्रजा नहीं है, इसका मतलब राजा नहीं है, क्योंकि राजा की एग्जिस्टेंस का मतलब ही है प्रजा का होना, क्योंकि तभी तो वो राजा कह रहा है, क्योंकि राजा का मतलब है जो राज्य करता है। यदि राज्य नहीं है, प्रजा नहीं है, तो किसके ऊपर वो राज्य करेगा, तो अर्थात राजा नहीं हो सकता। तो राजा शब्द के अर्थ के अंतर्गत निहित है प्रजा का होना। उसी प्रकार से भगवान कंट्रोलर नियंता शब्द के अंतर्गत है नियंत्रण जिनके ऊपर है उनका होना, उसके बिना नियंत्रण करता है कोई अर्थ ही नहीं है, इस शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो जब हम भगवान परमेश्वर की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि उनके साथ होनी चाहिए उनकी शक्तियां। जब हम शक्तिमान की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उस शब्द का अर्थ तभी पूर्ण है जब उनकी शक्तियां हैं। सूरज का अस्तित्व है जब सूर्य का प्रकाश है, बिना सूर्य प्रकाश के सूरज का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का अर्थ है शक्तिमान और शक्तियां, ये संयुक्त रूप से मिला करके ये है परम सत्ता का अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए जीव और भगवान दोनों नित्य हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि सब चीज तो भगवान से आई, तो जीव भी भगवान से आया है, स्वाभाविक है। एको बहुश्याम, भगवान एक और उन्होंने अपने को अनेक में विस्तृत किया, एको बहुश्याम। तो क्या इसका अर्थ यह है कि एक समय पर ऐसा था कि जीव नहीं थे, केवल भगवान थे, एको बहुश्याम भगवान थे, उन्हीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हालांकि हम कहते हैं कि सभी की उत्पत्ति भगवान से हुई है, पर इसका अर्थ भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कि एक समय था जब जीव नहीं थे। जैसे हम कहें सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति कहां से हुई है, सूरज से हुई है, सूरज के प्रकाश सूरज से आता है। पर क्या इसका अर्थ यह है कि कभी ऐसा भी है कि सूरज है लेकिन प्रकाश नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जहां शक्तिमान है वहां शक्तियां साथ साथ हैं, शक्तिमान और शक्ति अभेद, उसको हम भेद नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी शक्तियां शक्तिमान के ऊपर आश्रित मानी जाती हैं, सबऑर्डिनेट मानी जाती हैं। हालांकि दोनों की एग्जिस्टेंस हमेशा साइमल्टेनियसली रहती है। उसी प्रकार से भगवान और जीव दोनों नित्य हैं, लेकिन फिर भी जीव भगवान पर आश्रित है क्योंकि वो उनकी शक्ति है। तो इस दृष्टिकोण से सभी का उद्गम भगवान से है। तो भगवान, जैसे हम भगवान कहते हैं, तुरंत अंतरंग बहिरंग तटस्थ शक्तियां उनके साथ साथ हैं ही, जब इटर्नली, दोनों इटर्नली है, तो एको भविष्य। तो जब जब सृष्टि का सृजन होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, तो जब प्रलय होता है तो सभी जो जीव इस समय भौतिक जगत के अंदर एक शरीर धारण किए हुए हैं, वो सभी प्रलय के समय में महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अव्यक्त रूप में भगवान के शरीर में रहते हैं, अर्थात उस समय एक स्पार्क की तरह से रहते हैं। उस समय उनका ना तो आध्यात्मिक स्वरूप मैनिफेस्ट होता है और ना तो भौतिक, तो फिर मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए जब सृष्टि का सृजन दोबारा होता है तब फिर दोबारा से उनको शरीर प्रदान किए जाते हैं। इस तरह से दोबारा से भगवान के शरीर से भौतिक शक्ति निकलती है, लूज होती है, और फिर भौतिक शक्ति महातत्व के अंदर भगवान अपने नेत्रों से वो जीव जो उनके शरीर में समा गए थे उनको पुनः गर्भित करते हैं प्रकृति में, और फिर उनको एक शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से एको बहुश्याम, भगवान एक से अनेक में अपने को विस्तारित करते हैं। तो जीव और भगवान दोनों नित्य हैं, भगवान का धाम भी नित्य है, भगवान के सभी भक्तगण नित्य हैं, ये भक्ति नित्य है, भगवान की सेवा नित्य है। तो इसीलिए वैष्णव दर्शन के अनुसार भक्तों का बहुत महत्व है। अगर तो मायावादी लोग होते हैं, जब उनके समुदाय में हम जाएं तो हम देखेंगे उनका आपस में संबंध बड़ा ही आत्मीयता का लगता है, ओम शांति, सब सबको बड़ा आदर देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और कई बार हम देखते हैं भक्तों के समुदाय में सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है और आपस में भेद होते हैं, तो जब बाहर से लोग देखते हैं तो उनको लगता है ये परफेक्शन नहीं है, यहाँ पर लोगों के अपने अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, आपस में मतभेद भी होते हैं, तो ये आध्यात्मिक परफेक्शन नहीं है। आध्यात्मिक परफेक्शन है जो हमारा सब भेद खत्म हो जाए। इसलिए जब कभी कभी भक्त लोग कुछ आपस में विवाद होता था और प्रभुपाद जी को जाते थे कि प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे ये सब तो विवाद है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये दिखाता है कि हम एक एक व्यक्ति हैं कि जब जब व्यक्ति हैं तो दो साथ में होंगे तो निश्चित है उनकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, तो कुछ मतभेद होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये प्रूव करता है कि हम एक नहीं है, हम निराकार नहीं है, हम सब एक नहीं है। तो पॉइंट इंफेसाइज, यस, ये दिखाता है, यस, सी, दो लोग होंगे तो भी अलग अलग पर्सनैलिटी हो, अगर हम सब एक होते तो फिर कैसे हम सबके विचार हमेशा हर हमेशा अलग रहते हैं, कभी एक। तो इसलिए वो जो भ्रांत धारणा है कि अल्टीमेटली हम सब, वो गलत, वो नेचुरल नहीं। तो अलग, लेकिन भक्तों के समुदाय में ट्रेनिंग है कि वर्तमान में जो हमारे भेद हैं वो एक भौतिक धरातल पर है, वर्तमान में जो हमारी पर्सनैलिटी अलग अलग है वो तो सही है, लेकिन भौतिक आवरण के द्वारा, काम क्रोध लोभ मोह के द्वारा भेद है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी पर्सनैलिटी अलग अलग है सबकी, और वहां पर भी सबकी पर्सनैलिटी होने की वजह से वैरायटी है, सब एक ही नहीं है। अगर एक ही होता है तो फिर भगवान, फिर क्या आनंद है, वैरायटी मिलान है अलग अलग, लेकिन वो सब पर्सनैलिटीज आध्यात्मिक जगत में विविधता सब कृष्ण को एंजॉयमेंट के लिए कार्य करती हैं, विविधताएं, ये डिफरेंस है आध्यात्मिक जगत में। बहुत भौतिक जगत में जो विविधताएं हैं वो हर व्यक्ति अपने को यूनिवर्स का केंद्र मानता है, इसलिए वो सब विविधताएं आपस में टकराती हैं, एक जलाशय के अंदर अलग अलग पत्थर फेंके जाए तो सबकी तरंगे अलग अलग बनती हैं और वो तरंगे आपस में क्लैश करती हैं, ये भौतिक जगत में होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक ही केंद्र है कृष्ण, इसलिए वहां पर सबकी जो अलग अलग पर्सनैलिटी है वो केवल एक ही केंद्र की तरफ चलती हैं, इसलिए वो क्लैश नहीं करती हैं। लेकिन वो सब अलग अलग जो पर्सनैलिटीज हैं वो केवल श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए वैरायटी है। वहां पर गर्मी हो रही है, सीजन बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, लेकिन हेतु केवल एक ही है, कृष्ण को प्रसन्न करना। वहां चंद्रावली श्रीमती राधा रानी के दो अलग अलग कैंप हैं, लेकिन दोनों का हेतु है केवल एकमात्र भगवान को संतुष्ट करना। तो वो विविधताएं भगवान को आनंद प्रदान करती हैं, इसलिए विविधताएं हैं। तो ये प्रैक्टिस होनी है वैष्णव समाज में। तो जैसे प्रभावधान देते थे कि पार्लियामेंट में हमेशा दो ग्रुप होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, और हमेशा दोनों में विवाद ही रहेगा। जो पक्ष बोलेगा विपक्ष उसके उल्टा ही बोलेगा। लेकिन कभी ऐसा जब प्रश्न आए पूरे देश का, किसी दूसरे देश के साथ कुछ झगड़ा का प्रश्न आ जाए, तो पक्ष विपक्ष दोनों एक हो जाते हैं, केवल उसी समय में एक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से वैष्णव हालांकि अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन केंद्र है कृष्ण संतुष्टि। इसीलिए उनमें विविधता होने पर भी तकरार नहीं होती है। प्रभुपाद बोलते थे कि वैरायटी होनी चाहिए पर डिसेंशन नहीं होना चाहिए, तकरार नहीं पड़नी चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए, अलग नहीं हो जाने चाहिए, वो गलत। डिफरेंस ओपिनियन ओके, डिफरेंस पर्सनैलिटीज ओके, लेकिन डिसेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आपसे विचार में भिन्नता रखते हैं, लेकिन फिर भी हम संयुक्त रूप से कृष्ण की सेवा करने के लिए साथ रहेंगे। ये ट्रेनिंग जरूरी है, ये हाईएस्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, योर लव फॉर मी विल बी एविडेंट बाई योर कॉपरेटिंग। एक्चुअली लव का ये बहुत वास्तविक अर्थ है, वास्तव में हमको कृष्ण से प्रेम हो। यदि हमारे सबका केंद्र कृष्ण होगा, यदि हमारा केंद्र सेल्फिशनेस नहीं है, अपना हेतु नहीं है अपना, तो फिर हम यदि ऐसे पांच लोग सबका केंद्र केवल कृष्ण प्रसन्नता है, तो एक्चुअली इसमें आपस में कोई मन मुटाव होगा नहीं। भले उनकी पर्सनैलिटी रहेंगी वेद रहेंगे, लेकिन विचार अलग रहेंगे, लेकिन फिर भी दे विल ऑल स्टिल परफेक्टली दे विल वर्क टूगेदर टू सर्व कृष्ण। तो ये भेद है निराकारवादियों में और साकार। तो लोग जाते हैं कई बार मायावादी लोगों के इसमें बड़े बड़े आश्रम में, और वहां देखते हैं सब लोग बहुत ही शांति से आइए ऐसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे इस्कॉन में भक्त लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, यहाँ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं लोग। लेकिन एक्चुअली उनका वो व्यवहार के अंदर क्या भावना है, सब तो निराकार है, सब एक ही है, जो यतो मत ततो बस, जो है सब ठीक है। तो एक्चुअली वो वास्तव में एकता नहीं है, वो केवल वो एकता किस प्रकार से है कि सब अपना अपना इंद्रिय भोग करें और एक दूसरे के बीच में दखल ना करें, और इसलिए हम अपने अपनी सीमाओं में रहें, ये इस प्रकार का इंद्रिय भोग। लेकिन भक्त जो प्रयास कर रहे हैं कि हम सबको कृष्ण का संतुष्टि के लिए एक होना है, तो स्वाभाविक है उसमें थोड़ा कष्ट होगा, क्योंकि हमारा मिशन नहीं है पर्सनैलिटी को खत्म कर देना। इसलिए भक्तों के समुदाय में हम देखते हैं, जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, वेरी स्ट्रांग माइंडेड पीपल होते हैं, एक एक विचार है, और भगवान इंस्पायर करते हैं सबको, अलग अलग सबका अलग अलग सेवाएं लेते हैं उसमें, सो दैट इज नेचुरल। लेकिन सीखना यही है कि वो सब होते हुए भी हाउ वी कैन वर्क टूगेदर। तो अगर हम जितना अधिक कृष्ण को संतुष्ट रखने का केंद्र अपने मन के सामने रखेंगे, उतना ही अधिक आसान होगा काम एक साथ करना, कॉपरेट करना। तो ये भक्तों की समझ है कि भगवान और भगवान के पास। इसलिए मध्यम अधिकारी, जो कनिष्ठ अधिकारी है, वो तो केवल देखता है बस, भक्तों से मुझे कुछ लेन देन नहीं है, मैं और मेरे भगवान। वो नहीं जानता है कि मैं और मेरे भगवान ये गलत सिद्धांत है, क्योंकि भगवान कभी अकेले नहीं है। तो आप अकेले भगवान से संबंध स्थापित करने जा रहे हैं तो कैसे होगा, कृष्णा विल नॉट लाइक इट। फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू, आपको बाकी सब भक्तों से संबंध बनाना पड़ेगा, नहीं तो लाइक उनमें क्या करोगे आप। केवल भगवान है, भगवान के सब भक्त हैं, उनके साथ कोई संबंध नहीं, तो क्या करेंगे आप? यू वॉन्ट बी एबल टू स्टे देयर। तो नहीं, भगवान तो अनगिनत भक्तों से घिरे रहते हैं, तो हमें भगवान के साथ संबंध बनाने के अंदर निहित है भगवान के भक्तों के साथ संबंध बनाना सीखना, हाउ टू लिव विद डिवोटी, हाउ टू एसोसिएट। तो उसके लिए मार्गदर्शन दिया गया है कि एक मध्यम अधिकारी जो भगवान है उनके प्रति प्रेम की भावना को डेवलप करने का प्रयास करता है, जो अपने से प्रगत भक्त हैं उनकी सेवा करता है, जो अपने समान हैं उनसे मैत्री रखता है, जो अपने से कनिष्ठ हैं उन पर दया करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनको उनसे दूर रहता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम भक्तों के साथ डील करते हुए सीखते हैं व्यवहार, और जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में देखते हैं कैसे भक्तों के बीच में व्यवहार होता है, और इस प्रकार से हम सीखते सीखते मैच्योर होकर के भगवत धाम में इसी प्रकार से हमको व्यवहार करना है, अनेक भक्तों के साथ मिलकर के भगवान की सेवा करनी है। तो साधना स्थिति में इसलिए हमें बहुत महत्व देना चाहिए भक्तों को, हमारा उनके साथ संबंध क्या है उसको डेवलप करने के लिए, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं, जो कहते हैं वो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो कहते हैं मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे भक्त। ऐसे अनेक जगह हम स्थान पढ़ते हैं, अर्थात स्पष्ट है कि यदि हम सब भक्तों को सुपरसीड करके डायरेक्ट भगवान की सेवा करने चाहते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं। तो ऐसे कई लोग हैं जो डायरेक्ट हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं पर डायरेक्टली कृष्ण, तो वो भाव अच्छा नहीं। हम कृष्ण के भक्तों के मार्गदर्शन में उनके हम सेवा करना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम भगवान की सेवा करें, ना कि डायरेक्ट, ना कि सुपरसीड करके, बाईपास करके नहीं। दासन 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 दास की भावना में हम सेवा, वो भगवान को अधिक पसंद, वो हमारे भगवत धाम जाने के लिए अनुकूल। हरे कृष्ण। कोई कमेंट एमेंट और क्वेश्चन?
कुछ लोग कहते हैं कि हम गुरु से मांगते हैं तो कहते हैं भगवान ये इच्छा होगी तो देंगे, भगवान चाहेंगे तो उनका क्या व्यू रहेगा, क्या भगवान खुद आगे बोलेंगे तो?
एक्चुअली वो तो सब बहाना है, जैसे प्रभु जी ने स्टोरी बताया ना कि जब कुछ पैसा आना होता है तो उसके लिए इतना प्रयास करते हैं, तो उसके लिए क्यों इतना प्रयास करते हो? भगवान की इच्छा होगी तो भगवान आके दे देंगे आपको, उसके लिए तो पूरा दिन दौड़ते भागते हो, और जब भगवान के लिए दान देने की बात है तो बोले भगवान की इच्छा होगी तब देंगे। तो स्पष्ट रूप से इट्स सिंपली हिपोक्रेसी, बस केवल दे डोंट दे बहाना ढूंढते नहीं देंगे, दैट सेल्फ चीटिंग और कुछ नहीं। स्पष्ट दे जस्ट इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डोंट वांट टू गिव, दे आर सेइंग भगवान की इच्छा होगी तो देंगे। सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म, भगवान की इच्छा, भगवान भगवद्गीता में तो बताए हैं आप सबको कि मेरी सेवा करो, तो भगवान की तो इच्छा ही, भगवान की ऐसी इच्छा है किसी के साथ की कोई सेवा ना करे, भगवान की इच्छा होगी तब सेवा करेंगे, यानी कि भगवान की ऐसी भी इच्छा है कि कोई सेवा ना करे, अभी सेवा मत करो बाद में सेवा करना, ऐसा कभी हो सकता है? तो भगवान तो हम हर क्षण कह रहे हैं सर धर्मान वैतज्या, अब आप देखो आप कितना स्तर पर कर सकते हो, लेकिन कभी भगवान की तरफ से ऐसा नहीं होगा कि नहीं अभी आप ज्यादा सेवा मत करो, बस इतनी सेवा करो, क्योंकि भगवान को क्या ये हो जाएगा कि ज्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगा कंट्रोल करने में, सेवा कैसे ले सकती, ही इज अनंत, ही कैन एक्सेप्ट सेवा ऑफ एवरीवन अनलिमिटेडली, तो उनके पास तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो केवल प्रॉब्लम तो आपकी तरफ से है कि आप नहीं कर पा रहे।
कृष्ण को संतुष्ट करना है, जैसे कोई सेवा हो
उसके लिए भी अलग अलग मेथड वो लोग कंसिडर कर सकते हैं कि उसको लगता है कि ये मेथड से ही उभरे कि हम अच्छी तरह से ये पूरा कर पाएंगे, दूसरे को लगता है कि ये मेथड को कर पाएंगे, ऐसे भी भेदभाव रहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें वो लोग अलग अलग रास्ते में चले जाएंगे, एक को लगता है इस प्रकार से घूमना, एक को लगता है इस प्रकार से घूमना, दोनों का केंद्र ही नहीं किसी को भी कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी साथ में लेके भी नहीं कर पाते हैं, ये ठीक है।
यस, देयर कैन बी डिफरेंट वेज, लेकिन पहले तो दो बात हैं, एक तो हमेशा ये विचार होना चाहिए गुरु साधु शास्त्र के आधार पर कि व्हाट इज परफेक्ट, केवल इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो भी हमारे मन में आया वही करना है, उसका मतलब ये भी नहीं है। एट द सेम टाइम वो भी पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग भक्तों का अलग अलग योग्यता है, अलग अलग स्किल्स है, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार से वो प्रयास करेंगे, अलग अलग फ्रंट्स में अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि दोनों के एक ही कार्य करने के अलग अलग रास्ते हैं, मतलब अल्टीमेटली भगवान का प्रचार करना है उसमें एक ही कोई इस तरह से इंस्पायर्ड है, सो अगर गुरु से हम संपर्क में उनसे पूछ रहे हैं एंड दे आर बोनोफाइड वे, गुरु साधु शास्त्र से बोनोफाइड है, देन बोथ कैन इंडिविजुअली डू दैट।
एक ही कार्य करना है
एग्जाम्पल कुछ
वही कार्य है, लेकिन उसमें एक का मतलब ये है कि इस प्रकार से अच्छा कर देगा, एक का मतलब ये है कि ये रास्ते से अच्छा।
सो बोथ कैन इंडिविजुअली डू ट्राई, बोथ बोथ आर बोनाफाइड, यू डू दिस वे, डू दिस वे, कमी कहाँ है, बहुत सारे लोग हैं ना सब पूरे ब्रह्मांड में, सही ट्राई दिस वे, ट्राई दिस वे।
दूसरा हमारा ये पर बता रहे थे कि मायावादी भी एक के करते रहते हैं, लेकिन उनका मिला है ऐसा कुछ लगता है वहाँ पे
बहुत सारे जाते हैं,
बहुत सारे भगवान हो जाते हैं, ये बड़ा भगवान, ये बड़ा भगवान लड़ते
हैं।
विश्वेषण करते हैं दो भक्त थे, एक स्पेंड टाइम विद हाउस, हम जाते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके वो एक्सप्लेन करते, दूसरे भक्त हैं वो रीच टू डिफरेंट मेनी हाउस,
मेनी हाउस,
तो ये शोज एंड गुरु, तो दोनों साथ में जाएंगे तो कभी उसका बनेंगे, लेकिन फिर दोनों जब अलग 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 अपने साथ अपने एसोसिएट अलग अलग उसको लेके जाने पर दोनों बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं।
Yeah, so it's a variety, that's variety is there. Ganta Ashwana Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gosana.